arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि।
राजपूत साम्राज्य।
राजपूत साम्राज्य 650 से 1200 ईस्वी तक। सातवीं शताब्दी में भारत में एक नवीन जाति अस्तित्व में आई जिसे राजपूत कहते हैं। हर्ष की मृत्यु के साथ ही भारत की राजनैतिक एकता भी समाप्त हो गई। भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया जिसमें अनेक वीर और युद्धप्रिय लोगों ने अधिकार कर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे जिन्हें राजपूत कहते हैं। इसलिए 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के इस लगभग 500 वर्ष के काल को भारत के इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। और अब राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानें। प्रश्न यह उठता है कि राजपूत कौन थे। इस विषय में इतिहासकारों के मध्य मतभेद हैं। विभिन्न इतिहासकारों ने इस विषय में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। पहला, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कर्नल टार्ड के विचार में राजपूत हूण, शक और कुषाण जैसी विदेशी आक्रमणकारियों की संतान थे। कर्नल टार्ड के इस सिद्धांत का समर्थन स्मिथ, क्रूक्स और भंडारकर आदि विद्वानों ने किया है। कर्नल टार्ड के अनुसार सबसे पहला कारण है राजपूतों का अग्नि पूजा करना, क्योंकि हूण और शक जातियां अग्नि पूजा करती थी। दूसरा कारण है भारत के प्राचीन इतिहास में राजपूतों का नाम तक नहीं मिलता, परंतु इतिहासकारों ने कर्नल टार्ड के मत को स्वीकार नहीं किया। और अब दूसरा सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से। चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में उल्लेख है कि जब परशुराम ने सब क्षत्रियों का नाश कर दिया तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर आबू पर्वत पर यज्ञ किया और पवित्र अग्नि जलाकर ईश्वर से अपनी रक्षा के लिए शक्तिशाली जाति की उत्पत्ति की प्रार्थना की। परिणामतः अग्नि से चार वीर पुरुष निकले जिन्होंने चार राजपूत वंशों परमार, परिहार, चौहान और चालुक्य वंश की नींव रखी। परंतु इतिहासकारों के अनुसार यह बात सत्य नहीं है। उनका मानना है कि यह सिद्धांत कपोल कल्पित है और केवल राजपूतों की कीर्ति के लिए बनाया गया है। तीसरा, भारतीय उत्पत्ति। विभिन्न विद्वानों जैसे सीवी वैद्य, गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, के एम मुंशी, वी एन पुरी एवं के एस आयंगर आदि के विचार में राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान हैं। उनके अनुसार जातीय परंपरा और सभी संभावनाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि राजपूत शुद्ध आर्य हैं और वे विदेशियों की संतान नहीं हैं। पहला आधार राजपूतों का यह कथन है कि वे वैदिक काल के सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी क्षत्रियों की संतान हैं। बीकानेर, मेवाड़ और जयपुर आदि शासक गर्व से स्वीकार करते हैं कि वे प्राचीन आर्यों की संतान हैं। दूसरा आधार राजपूतों में अग्नि पूजा आर्य सभ्यता की देन है, न कि हूण या शक जाति से ली गई है। और अब चौथा सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति वीर जातियों से। विदेशियों और भारत के निवासियों में से कुछ व्यक्ति बहुत वीर, युद्धप्रिय और तलवार पर विश्वास करने वाले थे और राजवंशों से संबंधित थे। उन्हें राजपुत्र या राजपूत नाम दिया गया। वी ए स्मिथ के अनुसार यह केवल एक सैनिक स्वभाव की जाति, वंश, समूह अथवा संप्रदाय की प्रतीक है जिसके सदस्य राजपद का दावा करते हैं और जिन्हें ब्राह्मणों ने प्राचीन ग्रंथों के क्षत्रियों से संबंधित माना है। राजपूत जाति वंशों के विशाल समूह में अनेकों व्यक्ति हैं जिनके पूर्वज अलग अलग हैं। इन जातियों में से अनेक पांचवीं और छठवीं शताब्दी में भारत में आने वाली विदेशी जातियों की संतान हैं और अनेकों भारतीय जातियों की संतान हैं। इस प्रकार निष्कर्ष में हम देखते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों के मतों पर विचार करने के पश्चात यह मानना पड़ेगा कि राजपूत वस्तुतः भारतीय हैं। राजपूतों का उदय विदेशी आक्रमणों के विरोध स्वरूप हुआ उन्होंने स्वेच्छापूर्वक राष्ट्र एवं उसकी संस्कृति की रक्षा का भार अपने कंधों पर लिया। आइए अब जानते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। इस वंश का उदय गुर्जरत्रा, प्राचीन गुजरात अर्थात दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था। 6वीं सदी के मध्य ब्राह्मण हरिश्चंद्र ने प्रतिहार वंश की कन्या भद्रा से विवाह किया। धर्मशास्त्रीय नियम के अनुसार मातृवर्ण से क्षत्रिय प्रतिहार वंश की परंपरा चली। ये कथन है डॉक्टर राजबली पांडे का। आइए अब देखें इस वंश की उत्पत्ति। विद्वानों का एक वर्ग इन्हें विदेशी मानता है जो गुप्तों के पतन के बाद हूणों के साथ भारत आए। कन्नड़ कवि पंप ने राजा महिपाल को गुर्जर राज कहा है। गुर्जर शब्द का अर्थ गुर्जर जाति न होकर गुर्जरत्रा प्रदेश का निवासी है। प्रतिहारों ने अपनी उत्पत्ति लक्ष्मण से मानी है जिन्होंने राम के प्रतिहार का काम किया है। कवि राजशेखर उन्हें रघुकुल तिलक कहते हैं। वह निश्चित ही गुजरात क्षेत्र के निवासी थे। इन्होंने भारत में विदेशियों को रोकने में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। और अब जानते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। पहला नागभट्ट प्रथम 725 से 740 ईस्वी। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में नागभट्ट प्रथम ने जो क्षत्रिय वंश का राजा था उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डाली। इनकी एक शाखा कान्हा कृष्ण में थी। दूसरे नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय ने कान्यकुब्ज क्षेत्र जीतकर वहां अपनी राजधानी बनाई। इसने भड़ौच में अपनी सेना भेजी थी और अरबों का आक्रमण रोका था। 805 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय राजा हुआ जिसने 833 ईस्वी तक शासन किया। इसने कन्नौज पर विजय प्राप्त की तथा बंगाल के राजा धर्मपाल पर विजय प्राप्त की। इसने गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंशीय राजा की शक्ति को भी सीमित किया। नागभट्ट ने आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग पर विजय प्राप्त की। वत्स और मत्स्य, तुकृष्क और किशत क्षेत्रों को जीता। सुल्तान बेग वारिस के आक्रमण को विफल कर दिया। इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। और अब तीसरे नंबर पर जानते हैं मिहिर भोज के बारे में। 836 से 855 ईस्वी। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। उसने आदि वराह की उपाधि धारण की। मिहिर भोज के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। उसने मिहिर भोज के शासनकाल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। 836 ईस्वी में रामभद्र को मारकर उसका बेटा मिहिर भोज गद्दी पर बैठा। बाण भट्ट के हर्षचरित के आधार पर वह पराक्रमी सम्राट था। उसने बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त की तथा राजपूताना के दक्षिणी भाग को जीता। राजतरंगिणी के आधार पर पंजाब का करनाल क्षेत्र उसके नियंत्रण में था जिस पर बाद में कश्मीर के राजा शंकर वर्मा ने कब्जा कर लिया। पश्चिमी मालवा में हूणों के आक्रमण को इसने रोका। देवगढ़ एवं झांसी प्रदेश को भी इसने जीता। इसने उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट और भोजों का युद्ध कई वर्ष चला। दोनों अवंती क्षेत्र पर अधिकार के इच्छुक थे। बंगाल के देवपाल से भी मिहिर भोज का संघर्ष हुआ। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार उसके पास विशाल सेना थी और वह अत्यधिक योग्य शासक था। जीवन के अंतिम दिनों में पुत्र को राज्य सौंप कर मिहिर भोज तीर्थ यात्रा में चला गया। यह प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। हिमालय की तराई से बुंदेलखंड और कौशाम्बी तथा पाल राज्य की सीमा से लेकर सौराष्ट्र एवं राजस्थान का भूभाग इसके अधिकार में था। इसकी कुछ मुद्राएं भी मिली हैं। वह विष्णु और शिव का उपासक था तथा मुस्लिम आक्रांताओं का विरोधी था। और अब चौथा नाम महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम 885 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के राज्य को सुदृढ़ बनाए रखा। प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ राजशेखर ने कन्नौज की प्रतिष्ठा को अमर कर दिया। वह कपूर मंजरी, भुवन कोश, हरविलास, विद्ध साल मंजिका, बाल भारत, काव्य मीमांसा आदि का लेखक था। इसके पश्चात 910 ईस्वी में भोज द्वितीय गद्दी पर बैठा। 913 में उसके सौतेले भाई महिपाल प्रथम ने उसे हटाकर गद्दी प्राप्त की। और अब अगला नाम महिपाल प्रथम। यह प्रतापी राजा था। राष्ट्रकूटों से इसका युद्ध हुआ, पालों से इसका कोई युद्ध नहीं हुआ था। इसने नर्मदा क्षेत्र, उड़ीसा, केरल, मैसूर, पंजाब क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। क्षेमेश्वर के नाटक चंड कोशिकम में इसकी विजय का उल्लेख है। 943 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। इसके उत्तराधिकारी के रूप में महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल द्वितीय, विनायकपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल आदि शासक हुए। कालांतर में मुसलमानों से संघर्ष में उन्हें नुकसान हुआ। त्रिलोचन पाल के समय कन्नौज पर गहड़वाल वंश ने अपना अधिकार कर लिया। आइए अब देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के योगदान को। पहला, उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य। भारत में मुस्लिम आक्रमण के पूर्व उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश गुर्जर प्रतिहार था। डॉक्टर आर सी मजुमदार का विचार है कि प्रतिहारों का राज्य हर्षवर्धन के राज्य से बड़ा था और अधिक समय तक चलता रहा। दूसरा, इस्लामी आक्रमणों को रोकने में सफलता। भारतीय इतिहास में प्रतिहारों की महानता इस बात में है कि उन्होंने लगभग 3 शताब्दी तक पश्चिम दिशा से इस्लामी आक्रमण को रोके रखा। अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। ये लोग प्रतिहारों के विरोध के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। मुस्लिम भारत में 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के समय सफलतापूर्वक प्रविष्ट हुए, अन्यथा वे 3 शताब्दी पहले ही भारत में प्रविष्ट हो गए होते। यह प्रतिहारों की भारतीय इतिहास को महत्वपूर्ण देन है। तीसरा, कुशल शासन प्रबंध। प्रतिहार शासक बड़े सफल प्रबंधकर्ता भी थे। अरब यात्री सुलेमान ने उनके प्रशासन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। भारत का कोई भी राज्य इतना सुरक्षित नहीं था जितना कि सम्राट मिहिर भोज के शासनकाल में प्रतिहार वंश का था। प्रतिहारों का शासन प्रबंध अत्यधिक कुशल था। प्रजा शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर थी। चौथा, कला एवं विद्या के संरक्षक। प्रतिहार शासकों ने अनेक सुंदर मंदिरों एवं भव्य इमारतों का निर्माण किया। इनके शासनकाल में राजशेखर जैसे महान साहित्यकारों को संरक्षण प्राप्त हुआ। उन्होंने कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और काव्य मीमांसा जैसे उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।